नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए प्रतिदिन की तरह आज भी आप तैयार बैठे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम लुका रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने लुका रचित सुसमाचार के 11 अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और लुका रचित सुसमाचार के 12 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, यीशु फरीसियों के आचरण से अप्रसन्न था क्योंकि वे मनुष्यों के लिए ठोकर का कारण थे। अतः यीशु ने उनके आचरण की तुलना खमीर से की। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार एक फरीसी पूरे समाज को पथभ्रष्ट कर सकता है। अतः यीशु ने चिताया कि उनसे सावधान रहना। यीशु ने अनंत जीवन और प्रभु यीशु के पुनः आगमन संबंधित दृष्टांत भी कहे और अंत में कहा कि वह उन्हें अलग अलग करने आया है। तो आइए हम अपना अध्ययन आरंभ करें और सबसे पहले देखें फरीसियों के खमीर से सावधान। यीशु की सेवा में लुका कुछ अतिरिक्त घटनाएं व्यक्त करता है जिन्हें हम देखेंगे। लुका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके एक पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इतने में सब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। मित्रों, यह वह समय है जब यीशु की सेवा चरम सीमा पर है। भीड़ उसे घेरे रहती थी और यीशु आश्चर्य कर्म करता था। यीशु ने असंख्य लोगों को चंगाई दी और शारीरिक सर्वांगीता प्रदान की। विशाल भीड़ में आने का आश्चर्य कर्म लेख रखना असंभव था। फिर भी हम देखते हैं कि खमीर दुष्टता का प्रतीक है। अतः आप यह ना माने कि खमीर का संबंध कलीसिया से है, अन्यथा प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सावधान नहीं करता। फरीसियों का खमीर उनका आडंबर था। हम लुका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 2-5 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा और जो तुम कोठरियों में कानो कान कहा है वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। यहां पर हम पाते हैं कि मार्टिन लूथर ने भी इसके विषय में कहा है, परमेश्वर का भय मानो तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक यही बात हमारा प्रभु यीशु भी कहता है। हम लुका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 6-9 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गौराया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। यीशु द्वारा धर्म गुरुओं की खुल्लम खुल्ला निंदा उनके प्रकोप का कारण थी। उसके शिष्यों को भी उनका प्रकोप का भाजन बनना पड़ा था। अतः यीशु ने उन्हें परमेश्वर के संरक्षण का आश्वासन दिया। परमेश्वर के लेख में एक गौराया का मरना भी लिखा है, तो वह अपने सुसमाचार प्रचारकों अर्थात उसके सेवकों को कितना अधिक ध्यान देगा। हम लुका रचित सुसमाचार 12 उसके 10 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। मुंह के शब्दों द्वारा निंदा करने से मनुष्य दोषी नहीं ठहरता, उसका मन उसे दोषी ठहराता है। पवित्र आत्मा की निंदा करने का अर्थ है उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करना जो वह मनुष्य के मन में करता है, और यह एक स्थायी अवस्था है। हम लूका 12 अध्याय के 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। मेरे मित्र, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पद आलसी प्रचारक और संडे स्कूल शिक्षकों के लिए लापरवाही का बहाना न बनाए जाने का कारण है। यीशु अपने शिष्यों को ढाढ़स बंधा रहा है कि पवित्र आत्मा उनके साथ होगा, उन्हें डरने अर्थात घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उसकी गवाही देने से पीछे नहीं हटना है। हम लूका 12 अध्याय के 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने ऐसों का न्याय करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। आज परामर्श देने वाले अति शीघ्र आपको भला या बुरा कह देंगे। उन्हें यीशु से यह स्थान लेना चाहिए था, अर्थात समझ लेना चाहिए था। यीशु अपने प्रथम आगमन पर न्याय करने नहीं आया था, उसका उद्देश्य था केवल उद्धार करना। जब वह फिर आएगा तब न्याय करेगा। यूहन्ना कहता है 5 अध्याय उसके 22 में कि पिता ने न्याय उसके हाथों में सौंप दिया है। इस घटना पर यीशु ने मूर्ख धनवान का दृष्टांत सुनाया। लूका उसके 12 अध्याय और उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यह पद आज के संदर्भ में अति प्रासंगिक है। जब मनुष्य सांसारिक वस्तुओं को सर्वोपरि मानने लगता है और लालसा में डूब जाता है, तब यह ऐसा पाप हो जाता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, वरन आप भी नहीं समझ पाते कि आप पाप कर रहे हैं। मित्रों, ऐसी ही कुछ बातें हैं जैसे असीसी के संत फ्रांसिस ने कहा है, मनुष्य ने हर एक पाप का अंगीकार किया है अपेक्षा लालच के पाप का। किसी पत्रिका के संपादक ने अति उत्तम शब्द में कहा है, अपनी मुद्रा और सैन्य बल पर कोई राष्ट्र सोचे कि वह संसार का उद्धार कर सकता है, लालच की प्रभुता है। हम आगे देखते हैं मूर्ख धनवान। लूका 12 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। यहां उसके अहंकार पर ध्यान दे। वह कहता है मैं शब्द पर बल दे रहा है। उसे बहुत अधिक उपज प्राप्त हुई थी और इसकी उसे चिंता थी। तब हम आगे पढ़ते हैं लूका 12 उसके 18 से 21 पद में लिखा हुआ है, और उसने कहा, मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वस्तुओं के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इस मनुष्य ने पृथ्वी पर बड़ा भंडार जमा कर लिया था परंतु स्वर्ग में उसके पास कुछ नहीं था। प्रभु यीशु ने इस मनुष्य को मूर्ख कहा। इस मनुष्य का बाहरी रूप एक भले मनुष्य का था। वह एक ईमानदार नागरिक था, एक अच्छा पड़ोसी था। वह न तो दुराचारी था और न ही किसी माफिया से जुड़ा हुआ था। वह राजनीति में भी नहीं था। वह काला बाजार भी नहीं करता था। वह शराबी भी नहीं था। वह परिश्रीगामी भी नहीं था। तो फिर प्रभु ने उसे मूर्ख क्यों कहा? वह स्वार्थी था, लालची था। किसी ने स्वार्थ और लालच का बड़ा अच्छा व्यंग चित्र प्रस्तुत किया है। लिखा है, आज मैं पार्टी में गया, वहां केवल 3 अतिथि थे, मैं, मेरी देह और मेरा मन। मैंने चाय पीते पीते सब बिस्कुट खा लिए, पूरा केक मेरा ही था। मैंने खाने की सब वस्तुएं समाप्त कर दी। आज की मानवता यही है। परमेश्वर के वचन में यह दृष्टांत सबसे अधिक कड़वा है। आज की मानव प्रवृत्ति है, खा पी और आनंद मना, क्योंकि कल मरना तो है ही। यही कारण है कि यीशु ने उसे मूर्ख कहा। यदि वह बुद्धिमान होता तो मरणोपरांत के जीवन के बारे में सोचता, अपने से हटकर अन्यों के बारे में सोचता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लूका 12 अध्याय उसके 22 से 24 पद में हम पढ़ते हैं, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे न तो बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। यहां पर हम देखते हैं कि आवश्यकता की वस्तुएं रखना बुरा नहीं है। इस धनवान मनुष्य की समस्या थी उसका लालच, अर्थात पूंजीवाद। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 1 में धनवानों के दंड का उल्लेख है। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। यहां पर हम देखते हैं कि धन ही उनके लिए श्राप बन जाएगा। आज हम परमेश्वर से अधिक पैसों पर आश्रित हैं। हमें अपना मन खोजकर देखना है कि हम कहां पर हैं। और एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं केवल इसी जीवन के लिए जी रहा हूं? हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि चिड़ियों को देख करके सीखो। हम लूका 12 अध्याय उसके 26 और 27 पद में आगे पढ़ते हैं, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? शोषणों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि फूल सबकी मनपसंद है, और मैं सोचता हूं कि इस फूल की रचना करते समय परमेश्वर के मन में क्या था कि उसे ऐसा लापरवाह फूल बनाए। वह गुलाब की नाई सावधानीपूर्वक अपनी पंखुड़ियां नहीं खोलता है। प्रभु यीशु ने कहा, शोषण के फूलों को देखो। फूल हमसे कहते हैं, तुम लोग अपने शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते, तरह तरह का सौदाकरण और सौंदर्यकरण करते हो। तुम फूलों की नाई सुंदर नहीं दिखते। कैसा उत्तम संदेश है। मित्रों, हमें परमेश्वर पर और अधिक निर्भर करना चाहिए, अर्थात अपनी निर्भरता उसी पर रखनी चाहिए। हम लूका 12 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों कर ना पहनाएगा। यह पद आलस को प्रोत्साहन नहीं देता। मनुष्य की क्षमताएं चिड़ियों और फूलों में नहीं है। वे बोते नहीं, वे कपड़ा नहीं बुनते, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अपने जीवन की पूरी तरह अपनी क्षमताओं पर ही आश्रित रखे। हम लूका 12 उसके 29 से 31 पद में पढ़ते हैं, और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज का संसार काम काज में व्यस्त है। वह भूल गया है कि स्वर्ग में परमेश्वर का और हमारी आत्माएं अनश्वर है। हम लूका 12 उसके 32 से 34 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। सबको एक दिन परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होना होगा। वहां उनके पास सांसारिक वस्तुएं नहीं होंगी, वहां उनके भंडार नहीं होंगे। वह परमेश्वर से रहित जीवन जी रहा है, और वह परमेश्वर से रहित ही मर जाएगा। आगे हम देखते हैं विवाह करके लौटने की घटना। इस संदर्भ में प्रभु ने दो दृष्टांत सुनाए, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 35 से 40 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते हुए पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंद लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मित्रों, यद्यपि यह दृष्टांत इसराइल और प्रभु के पुनः आगमन पर राज्य की स्थापना के विषय में है, इसका अभिप्राय कलीसिया के बादलों में उठाए जाने से भी है। इसराइल में दूल्हा अपने मित्रों के साथ भोजन करने के बाद बारात लेकर वधू के घर जाता था। उसके विवाह के पश्चात उसके लौटने की प्रतीक्षा में उसके सेवकों को सचेत एवं तैयार रहना होता था। इसी प्रकार विश्वासियों को भी प्रभु के फिर से आने के लिए तैयार एवं सचेत रहना है, दिए जलाकर अर्थात ज्योति में रहना है। यहाँ अकस्मात ही प्रभु चोर का उल्लेख करता है। इसका निहित अर्थ यह है कि यीशु का आगमन अकस्मात ही होगा, अर्थात अचानक होगा। पौलुस भी कहता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 2 पद में, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। परंतु मसीह कलीसिया को लेने आएगा तो चोर की नाई नहीं आएगा। उस दिन हम लोग उससे भेंट करने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मसीह के आगमन के प्रकाश में सेवकों की परख। लुकार्ची सुसमाचार 12 अध्याय उसके 42 और 43 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। अब एक असाधारण दृष्टांत है जो मसीह के फिर से आने के संबंध में हमारे उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डालता है। वास्तव में यह दृष्टांत इसराइल के लिए है, परंतु यह हम विश्वासियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, अर्थात अर्थ रखता है, क्योंकि हम प्रभु से भेंट करने के लिए बादलों में उठाए जाने की बाट जोहते हैं। अनेक लोग उसके आने की तारीखों की गिनती कर रहे हैं, जो कुछ कामकाज छोड़कर उसके आने की बाट जोहते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है, हमें तो काम में यत्नशील रहना है। मसीह का आगमन एक धन्य आशा है, हमें कार्य करते रहना है कि मसीह के आने पर अपने काम उसे अर्पित कर सकें। हम लूका 12 उसके 44 से 46 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पिंकड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। इस दृष्टांत से हमें 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। मसीह के आगमन पर संदेह करने से मनुष्य अधिकार के दुरुपयोग और आलस्य की परीक्षा में गिरता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे कि मसीह अगले ही पल आने वाला है और हमें उसे लेखा देना है। यह तो सच ही है कि उसके आगमन पर हमें उसे लेखा देना ही होगा। हम लूका 12 उसके 47 और 48 पद में आगे पढ़ते हैं, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा, न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। प्रभु आज नहीं आएगा, वह संभवतः कल नहीं आएगा। हमारी मानसिकता ऐसी है कि यदि मसीह दिखाई नहीं दे रहा है तो सांसारिकता में लग जाएं, परंतु हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा और प्रभु जिस दिन आएगा उस दिन हमारा न्याय होगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हम सब से पौलुस का क्या अभिप्राय है? मसीही विश्वासियों को मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना होगा। यह न्याय हमारे उद्धार को निश्चित नहीं करेगा, परंतु हमारे कामों का प्रतिफल देगा। विश्वासियों के प्रतिफल बड़े या छोटे होंगे और अविश्वासियों का दंड भी अलग अलग होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यीशु अलग कराने आया था। हम लूका 12 उसके 49 पद में पढ़ते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं, केवल यह कि अभी सुलग जाती। मेरे मित्रों, आज जब संसार गहन अंधकार में है, यीशु की निंदा की जा रही है, पृथ्वी पर आग उंडेली जा चुकी है। लूका 12 उसके 50 पद में हम पढ़ते हैं, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह न हो ले तब तक मैं किसी सकेती में रहूंगा। यह पद क्रूस पर यीशु की मृत्यु का रहस्यमय पद है। हम लूका 12 उसके 51 से 53 पद में आगे पढ़ते हैं, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। मसीह यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते ही मनुष्य अविश्वासियों से पृथक हो जाता है, अर्थात कर दिया जाता है, चाहे वे उसके मित्र हों या रिश्तेदार। हम लूका 12 उसके 54 से 56 पद में आगे पढ़ते हैं, और उसने भीड़ से भी कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी और ऐसा ही होता है, और जब दक्षिण चलती है तो देखते हो और कहते हो कि लूह चलेगी और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? हमें अपने संसार को समझना है। मनुष्य सोचता है कि वह अपनी भलाइयों और कर्मों द्वारा पृथ्वी पर शांति ला पाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर शांति स्थापित हो, परंतु संयुक्त राष्ट्र नहीं कर सका। सेनाएं युद्ध में सक्रिय हैं, फिर भी नहीं हो पाया। हमें स्पष्ट समझना चाहिए और जान लेना चाहिए कि मसीह जब तक नहीं आएगा, शांति स्थापित नहीं हो सकती है। मेरे प्रिय मित्रों, हम जितना भी प्रयत्न कर लें, हमारे प्रयत्न व्यर्थ होंगे, क्योंकि जब तक मसीह इस जगत में नहीं आता, शांति स्थापित नहीं हो सकती है। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आपने मसीह के वचनों के द्वारा से आशीष को प्राप्त किया है। हम अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दें।
मसीह महिमा हो, तेरी महिमा हो, मसीह महिमा हो, सुबह को हो, दोपहर को हो, संध्या को सारी रात्रि को, मसीह महिमा, मसीह महिमा हो, तेरी महिमा हो, मसीह महिमा।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 1100019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
उसका ही